विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। हमारी चर्चा का विषय है सीरिया संकट। सीरिया संकट का छठा साल शुरू हो चुका है। पिछले 5 वर्षों में ये देश बड़ी भयानक परिस्थितियों से गुजरा और जंग ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। दुनिया भर से आतंकवादी एकत्रित होकर तुर्की के रास्ते सीरिया पहुंचे। सऊदी अरब, कतर, इमारात, तुर्की और जॉर्डन जैसे क्षेत्रीय देशों और अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों ने इस पूरी प्रक्रिया में चरमपंथी संगठनों का साथ दिया, जबकि सीरियाई सरकार और जनता ने डटकर इस भयानक साजिश का सामना किया और इस लड़ाई में सीरियाई राष्ट्र को ईरान, रूस और हिजबुल्ला का समर्थन मिला। इस लड़ाई में कई उतार चढ़ाव आए और धीरे धीरे सीरियाई सेना और स्वयंसेवी बलों ने अपनी स्थिति मजबूत की और इस समय हालात ये हैं कि विभिन्न मोर्चों पर आतंकियों को पराजय का सामना करना पड़ रहा है। सेना की तेज प्रगति के कारण दमिश्क सरकार की राजनीतिक एवं सामरिक स्थिति मजबूत हो गई है। हाल ही में 27 मार्च को सेना ने पालमीरा शहर को आतंकियों के कब्जे से स्वतंत्र कराया। पालमीरा की आजादी 18 दिन की लड़ाई के बाद हासिल हुई। पालमीरा की आजादी पर सीरियाई सरकार को विश्व के अनेक देशों से बधाई संदेश मिले और उन लोगों ने भी चैन की सांस ली जिन्हें ऐतिहासिक अवशेषों से लगाव है। सीरियाई राष्ट्रपति की सलाहकार बुसैना शाबान ने भी सेना और स्वयंसेवी बलों की इस सफलता पर खुशी जताई।
الذين ساعدوا في الشعب السوري والجيش السوري في معركته هذه।
आम जनता के स्तर पर भी इस सफलता का जश्न मनाया गया। कई शहरों में आतंकियों के भय को धता बताते हुए लोग सड़कों पर निकल आए और घंटों तक जश्न का माहौल रहा।
هلا يا صقر العار رئيس الجمهوريه هلا يا صقر العار رئيس الجمهوريه تسلم يا الدكتور بشار وارجع على سوريا تسلم يا الدكتور بشار وارجع على سوريا هلا يا صقر العرب رئيس الجمهورية هلا يا صقر العرب رئيس الجمهورية।
पालमीरा सीरिया का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है जहां चारों ओर हजारों साल पुराने अनगिनत ऐतिहासिक अवशेष बिखरे हुए हैं। इन अवशेषों को आतंकी संगठन दाइश ने भारी नुकसान पहुंचाया। लगभग 1 साल पहले आतंकियों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था और शहर में बड़ी संख्या में लोगों का जनसंहार किया। आजादी के बाद पालमीरा शहर में सामूहिक कब्रें मिल रही हैं। भारत के वरिष्ठ टीकाकार डॉक्टर मोहम्मद अरशद का कहना है कि पालमीरा की आजादी आतंकवाद के विरुद्ध जारी लड़ाई में बहुत बड़ी कामयाबी है और इस लड़ाई में आशा सीरियाई सेना और सीरियाई सरकार से ही है।
देखिए, वाकई यह है कि पालमीरा की आज़ादी ये जो है शाम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें एक बशारुल असद का एक बड़ा कारनामा है जो उन्होंने अंजाम दिया है। जाहिर सी बात है कि उनकी फ़ौजों ने, आवाम ने उनको सपोर्ट किया है, इसलिए जो है वो इसको आज़ाद कराने में कामयाब हुए हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस पर जितनी जो है उनकी तारीफ़ की जाए और जितनी उनको मुबारकबाद दी जाए वो कम है, क्योंकि दाइश एक बहुत बड़ा ख़तरा बन करके उभरा था और जब पालमीरा पे और गुज़श्ता दिनों रमादी पे जब जो है पिछले मई में कब्ज़ा हुआ था तो ये समझा जा रहा था, ये बावर किया जा रहा था कि दाइश जो है बहुत मजबूत होती जा रही है और इसको शिकस्त देना आसान नहीं होगा। और वाकया भी यही है कि दुनिया की जो सो कॉल्ड सुपर पावर और उसकी मदद से जो उनके इत्तेहादी हैं शाम में, उन्होंने कोशिश की कि दाइश को ख़त्म किया जाए या उन्होंने एक तरह से उसके बार बार ऐलान किए कि नहीं, दाइश को हम ख़त्म करेंगे और उसके लिए उन्होंने जो कुछ भी उनकी तरफ से हो सकता था वो करने की कोशिश की, मगर उसमें वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि शाम बज़ाहिर जो है अकेला है, उसे ताईद हासिल है ईरान की, उसे कुछ हिमायत हासिल है, हिजबुल्ला की, उसे जो है हिमायत हासिल है रूस की, खासतौर से फजाइया की उसकी, उस वक्त जो है उसने पालमीरा को आज़ाद करा करके दाइश से एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और मेरा ख्याल ये है कि ये दाइश के जवाल का एक तरह से आगाज़ है, क्योंकि इसके बाद शाम के लिए बड़ी आजमाइशें हैं, उसने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दाइश एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द ग्रुप है, उसके पास काफ़ी अफराद हैं, उसके पास केमिकल हथियार हैं, तो वो हो सकता है कि अवामी सतह पे कुछ इस तरह के काम करने की कोशिश करे, जैसा कि गुज़श्ता दिनों बगदाद में हुआ कि स्टेडियम में उन्होंने धमाका किया खुदकुश, तो हो सकता है कि शाम को भी डी स्टेबलाइज करने की बाज़ जगहों पे दाइश कोशिश करे, क्योंकि दाइश आसानी से हार मानने वाला ग्रुप नहीं है। मगर यह कि शाम के लिए एक अच्छी बात यह है कि उसने पालमीरा को आज़ाद कराया है, उसके बाद उसकी फौजें आगे बढ़ी हैं, बाज़ और इलाकों में उसे थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा कुछ ही दिनों बाद शायद पालमीरा के बाद जो है रक्का, जो कि इस एक तरह से दाइश का दारुल हुकूमत है, जो पूरी तरह से उसके कब्ज़े में है, शायद जो है वो भी आज़ाद कराया जा सके। क्योंकि हमें अगर किसी से उम्मीद है इस वक्त तो वो बशारुल असद या उनकी फ़ौजों से ही है। इत्तेहादी फ़ौजों ने आज तक कुछ भी नहीं किया है और न वो कुछ करने की पोजीशन में हमें नज़र आते हैं।
ऐतिहासिक शहर पालमीरा की आतंकियों के कब्जे से आज़ादी का बहुत सार्थक प्रभाव सेना और स्वयंसेवी बलों के मनोबल पर पड़ा है और इस विजय के बाद उनकी गति और भी तेज हो गई है। पालमीरा में आतंकियों की पराजय के बाद अब देरुज़ूर और रक्का शहर की बारी है। सेना ने देरुज़ूर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और इसी क्रम में करियतैन नामक शहर के चारों ओर सेना ने घेरा तंग कर दिया है और कभी भी ये क्षेत्र आतंकियों के कब्जे से आज़ाद हो सकता है। लाज़िक़िया का क्षेत्र पूरी तरह लगभग आतंकियों के कब्जे से स्वतंत्र हो चुका है और हलब और हमा में भी आतंकियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मैदान में सेना और स्वयंसेवी बलों को मिलने वाली सफलताओं का असर राजनीतिक मंच पर भी दिखाई दिया। पालमीरा को आज़ादी ऐसे समय में मिली है जब दमिश्क सरकार के प्रतिनिधिमंडल और विरोधी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत जारी है, जिसमें विरोधी संगठनों की कोशिश है कि वो कठोर शर्तें रखें। जिनेवा में वार्ता शुरू होने से पहले रूस ने सीरिया से अपने कुछ सैनिकों को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद ये अटकलें भी शुरू हो गई थीं कि दमिश्क और मॉस्को के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए हैं और रूस अब सीरिया की मदद में कमी कर रहा है, लेकिन सीरियाई सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। रूस ने सीरिया से अपने सैनिक दोनों पक्षों की योजना के तहत निकाले हैं और इस बारे में पहले दोनों पक्षों के बीच विचार विमर्श हुआ। सीरियाई राष्ट्रपति बशार असद की सलाहकार बुसैना शाबान ने अपने बयान में इस तथ्य को बयान किया।
الحقيقة بالنسبة للحكومة السورية لم تكن هذه الخطوة مفاجئة ولم تكن مقلقة ذلك لأنه ليس فقط تم إخبار الحكومة السورية وإنما تم التشاور مع الحكومة السورية
रूस के सैनिकों के सीरिया से निकल जाने के बाद ऐतिहासिक शहर पालमीरा की स्वतंत्रता की खबर आई तो साथ ही ये भी पता चला कि इस शहर को आतंकियों से आज़ाद कराने में कुछ रूसी सैनिक भी मारे गए। इससे ये सच्चाई सामने आ गई कि दमिश्क और मॉस्को की सरकारों के बीच कोई मतभेद नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक समन्वय जारी है। इस बीच एक महत्वपूर्ण प्रगति ये हुई कि सीरिया में संघर्ष विराम लागू हो गया, लेकिन इस संघर्ष विराम के दौरान भी आतंकियों के विरुद्ध सीरियाई सेना के हमले जारी रहे और पालमीरा की आज़ादी भी इन्हीं हमलों का नतीजा थी। संघर्ष विराम पर सहमति रूस और अमेरिका के बीच बातचीत के बाद बनी और इसके बारे में स्टीफन दी मस्तूरा ने मीडिया को बताया, जो सीरिया के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत हैं।
Convening and we had the beginning of the Geneva intra-Syrian talks, we were flooded with messages from the Syrian people. They were coming from all over, outside and inside Syria, and they were asking two things, actually three. The first one was, please don't have another conference as the others, and don't have just a conference about talking about talks. But please give us two things. One is humanitarian access. We are human beings. We deserve to get food, water, access to medical facilities. And second, we need no more bombs, no more war.
सरकार विरोधियों की ओर से कई बार संघर्ष विराम का हनन किया गया और विरोधी संगठनों ने हमले किए, लेकिन सीरियाई सेना और स्वयंसेवी बलों ने इस संदर्भ में संयम दिखाया। टीकाकार मानते हैं कि तीन महत्वपूर्ण घटनाओं ने वार्ता की मेज पर सीरियाई सरकार की स्थिति को बहुत मजबूत कर दिया है। एक तो ब्रसेल्स में होने वाले आतंकी हमले थे। इन हमलों से साबित हुआ कि आतंकी संगठन दाइश केवल सीरिया और इराक की सीमा में सीमित तो नहीं है, बल्कि यूरोप के भीतर घुसकर हमले करने की क्षमता उसने प्राप्त कर ली है। और इस आतंकी संगठन का फैलाव इस हद तक बढ़ने में पश्चिमी देशों ने भूमिका निभाई है। ब्रसेल्स हमलों के बाद यूरोप वासियों और अन्य पश्चिमी देशों को ये एहसास हुआ कि सीरिया और इराक में दाइश का समर्थन बिल्कुल गलत रणनीति थी। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने जर्मनी के एक टीवी चैनल को साक्षात्कार देते हुए जहां देश के भीतर की परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, वहीं पश्चिम की गलतियों को भी रेखांकित किया।
Actually, the process is to have a national unity government where whoever wants to come and join our government to be part of it. This government should prepare for the next constitution.
इस समय पश्चिमी देशों के प्रतिनिधिमंडल सीरिया के दौरे कर रहे हैं और आतंकियों से बचने के तरीकों के बारे में दमिश्क सरकार से विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में फ्रांस के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने दमिश्क का दौरा करके सीरियाई राष्ट्रपति बशार असद और अन्य अधिकारियों से मुलाकातें की। इससे पता चलता है कि पश्चिमी देशों को अपनी रणनीति के खतरनाक परिणामों का आभास होने लगा है, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम ने इस हकीकत को समझने में बहुत देर लगाई। इस बीच 3 लाख के करीब सीरियाई नागरिक मौत की नींद सो गए और इस देश को कितना नुकसान पहुंचा इसका कोई सही अनुमान नहीं है। ये भी देखने की बात होगी कि वाकई पश्चिम ने अपनी गलतियों से पाठ लिया है या नहीं।